लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कैथोलिक कलीसिया की वर्तमान स्थिति, कॉन्क्लेव का इतिहास एवं नए पोप का चुनाव करने वाले सक्षम कार्डिनलों का विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। दिवंगत पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के बाद कार्तिक कलीसिया किस दौर से गुजर रही है, कलीसिया में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कॉन्क्लेव की शुरुआत कैसे हुई, नौ दिवसीय शोक की अवधि समाप्त होने पर आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
La mia esile voce è qui oggi a esprimere la preghiera e il dolore di una porzione di chiesa.
21 aprile 2025 को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद कार्तिक कलीसिया शोक और परिवर्तन काल के दौर से गुजर रही है। 26 अप्रैल को संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में दिवंगत पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए विश्व के कई नेताओं और गण्यमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 2,50,000 लोग शामिल हुए थे। उसके बाद पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को संत मरिया मेजर महागिरजाघर में दफनाया गया। दफन क्रिया के बाद से ही संत पापा फ्रांसिस के लिए नवम दियालिस अर्थात नौ दिवसीय शोक मनाने की परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरी कलीसिया खासकर रोम के संत पेत्रस महागिरजाघर में हर रोज पौत्र मिसा अर्पित की जा रही है। इस बीच कलीसिया के कार्डिनलगण अगले पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं जो 7 मई से शुरू होने वाला है। यह कॉन्क्लेव हाल के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव होगा जिसमें 80 साल से कम उम्र के 135 कार्डिनल मतदान करने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे कॉन्क्लेव निकट आ रहा है, कलीसिया चिंतन और प्रतीक्षा की स्थिति में है तथा एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो आधुनिक विश्व की चुनौतियों का समाधान करते हुए पोप फ्रांसिस की विरासत को कायम रख सके। न केवल कार्तिक समुदाय बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग नए पोप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभिन्न नामों पर विचार एवं प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, किंतु यह तो समय ही बताएगा कि इस महान कार्तिक कलीसिया का नेतृत्व किसके हाथों सौंपा जाए।
In questi giorni tanti presbiteri romani ricordano
267वें पोप का मार्ग एक ऐसे अनुष्ठान से होकर गुजरने वाला है जिससे सेदे वकांते या रिक्त सिंहासन की स्थिति कायम रहने से बचने के लिए बनाया गया था। पोप के चुनाव के लिए 2/3 मतों का बहुमत आवश्यक है। कॉन्क्लेव के समय कुछ दिनों के लिए सिस्टीन चैपल इतिहास की नजर के लिए खुल जाता है और दुनिया की निगाह के लिए बंद हो जाता है। आगामी 7 मई से कार्डिनल निर्वाचकों को पोप का चुनाव करने के लिए बुलाया जाएगा। आगामी कॉन्क्लेव जो कलीसिया के इतिहास में 76वां कॉन्क्लेव होगा, माइकलांजेलो की प्रसिद्ध कलाकृति अंतिम न्याय के तत्वाधान में आयोजित 26वां कॉन्क्लेव होगा। कॉन्क्लेव जो लैटिन शब्द कुम क्लावे से आता है, घर में आरक्षित स्थान को संदर्भित करता है, चाबी से पूरी तरह बंद किया गया स्थान। कलीसिया की भाषा में इसका प्रयोग उस बंद स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है जहां पोप का चुनाव होता है, या उन कार्डिनलों को भी इंगित करता है जिन्हें नए पोप का चुनाव करने के लिए बुलाया जाता है। कॉन्क्लेव जो 7 मई को शुरू होने वाला है, इसकी स्थापना 1274 में पोप ग्रेगोरी 10वें ने की थी। इस तिथि से पहले लोग पोप के साधारण चुनाव की बात करते थे। कलीसिया के इतिहास में लगभग 1200 वर्षों तक रोम के बिशप के रूप में संत पेत्रस के उत्तराधिकारी का चुनाव स्थानीय समुदाय की भागीदारी से होता था। याजक विश्वासियों द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों की जांच करते थे और पोप का चयन धर्माध्यक्षों द्वारा किया जाता था। 14वीं से 11वीं सदी तक चुनाव में बाहरी प्रभावों का प्रश्न भी छाया रहा। रोमन सम्राटों, कैरोलिंगियनों और दूसरे लोगों ने पोप की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किया। सदियों की इस लंबी अवधि में कई परिवर्तन हुए जिन्होंने कॉन्क्लेव के रूप को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस अर्थ में हस्तक्षेप करने वाले पहले व्यक्ति पोप निकोलस द्वितीय थे जिन्होंने 1049 में इन नॉमिने डोमिने प्रभु के नाम पर नामक दस्तावेज या पोप का आदेश पत्र लिखा था। इस दस्तावेज में विशेष रूप से यह स्थापित किया गया था कि केवल कार्डिनल ही पोप का चुनाव कर सकते हैं। अंततः 1179 में पोप अलेक्जेंडर तृतीय ने संविधान लिसेट दी वितांदा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया। इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता को जोड़ा गया जो पोप के चुनाव का एक महत्वपूर्ण तत्व था जो आज भी कायम है। 1268 में एक महासभा आयोजित की गई थी जिसका वर्णन कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। पोप का चुनाव करने के लिए 18 कार्डिनल वितेर्बो स्थित पोप के महल पर एकत्रित हुए। यह इतिहास का सबसे लंबा कॉन्क्लेव था। पोप का चुनाव 2 वर्ष और 9 महीने के बाद किया गया। ये परेशानी भरा समय था। इस लंबी अवधि के दौरान वितेर्बो की जनता ने निराश होकर कार्डिनलों को महल में बंद करने का निर्णय लिया। दरवाजे ईंटों से बंद कर दिए गए और छत हटा दी गई। अंततः लीज के प्रधान उपयाजक ग्रेगोरी 10वें जो उस समय पौत्र भूमि में थे पोप चुने गए और 1274 में उन्होंने संविधान यूबी पेरिकुलम लागू किया जिससे आधिकारिक तौर पर कॉन्क्लेव की स्थापना हुई। यह भी निश्चित किया गया कि इसे ऐसे स्थान पर रखा जाए जो वास्तव में अंदर और बाहर से बंद हो। इन प्रावधानों के आधार पर संविधान यूबी पेरिकुलम की घोषणा के बाद इतिहास में पहला कॉन्क्लेव अरेजो में 1276 में पोप इनोसेंट 5वें के चुनाव के साथ संपन्न हुआ। 1621 में पोप ग्रेगोरी 15वें ने एक गुप्त एवं लिखित वोट की बाध्यता पेश की। वहीं 1904 में पोप प्यूस 10वें ने किसी भी रूप में विशिष्टता के कथित अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव के बाद भी कॉन्क्लेव में क्या हुआ इसके बारे में गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता लागू की गई। साथ ही दस्तावेज केवल पोप के लिए उपलब्ध कराने का नियम लागू किया गया। युद्ध के बाद 1945 में पोप प्यूस 12वें ने संविधान वकांतिस एपोस्तोली के 37 लागू किया जिसमें कुछ नवाचार पेश किए गए। विशेष रूप से जिस समय सेदे वकांते या रिक्त सिंहासन शुरू होता है सभी कार्डिनल जिसमें राज्य सचिव और वैटिकन के सभी विभागों के प्रीफेक्ट भी शामिल हैं अपने कार्यालय से मुक्त हो जाते हैं सिवाय कमरलेंगो पेनिटेंसियरी और रोम के विकर के मोतु प्रोप्रियो इनग्रावेशंतिम आयतातिम या उम्र बढ़ने के तहत पॉल 6वें ने निर्णय लिया कि कार्डिनल केवल 80 वर्ष की आयु तक ही निर्वाचक हो सकते हैं। पोप के चुनाव के लिए वर्तमान में यूनिवर्सी डोमिनिची ग्रेजिस कानून लागू है जिससे 1996 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने लागू किया था और 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें द्वारा संशोधित किया गया। यह निश्चित करता है कि कॉन्क्लेव को सिस्टीन चैपल में आयोजित किया जाना चाहिए जिसे सौंदर्य का मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है जो मन और हृदय को शाश्वत ईश्वर की ओर आकर्षित करने में सक्षम है। सिस्टीन चैपल में कलीसिया के इतिहास का एक नया अध्याय खुलने वाला है। दुनिया की निगाहें इस सौंदर्य के मार्ग की ओर लगी हुई हैं, जो कॉन्क्लेव के लिए बंद है। रोम के नए धर्माध्यक्ष के चेहरे की झलक पाने और उनका नाम जानने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्तिक कलीसिया की वर्तमान स्थिति एवं कॉन्क्लेव के इतिहास पर चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आ जा सदा भर दे श्रोताओं, आज हम 7 मई को वाटिकन के सिस्टीन चैपल में शुरू होने वाले कॉन्क्लेव के बारे में सुनेंगे। इस कॉन्क्लेव में कार्डिनल मंडल के 135 निर्वाचक कार्डिनल 5 महाद्वीपों के 71 अलग अलग देशों से आते हैं। उनमें से 3/4 से ज्यादा अर्थात 108 संत पापा फ्रांसिस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जबकि 22 संत पापा बेनेडिक्ट द्वारा बनाए गए थे और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 5 कार्डिनल बनाए गए थे। वे हैं फ्रांसीसी कार्डिनल फिलिप बारबारिन, क्रोएशियाई कार्डिनल जोसेफ बोजानिक, बोस्निया और हर्जोगोविना के कार्डिनल विंको पुलसिक और घाना के कार्डिनल पीटर टर्कसन। संत पापा फ्रांसिस ने अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के दौरान कार्डिनल मंडल को महत्वपूर्ण रूप से नया स्वरूप दिया, जिससे यह कम यूरोप केंद्रित और अधिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बन गया। यह दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की कैथोलिक धर्म के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को वैश्विक दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने के व्यक्तिगत सुझाव को दर्शाता है, जिसमें परिधीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और व्यापक प्रवृत्ति यह है कि भविष्य की कलीसिया संभवतः गैर यूरोपीय चेहरा होगी। पहली बार 12 देशों के प्रतिनिधित्व उनके मूल कार्डिनल निर्वाचकों द्वारा किया जाएगा। उनमें शामिल हैं हैती के कार्डिनल चिम्बली लेंगालेस, कैप वेर्दे के कार्डिनल अर्लिंडो फेर्नांडो गोम्स, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के कार्डिनल डाइडोने नजापालिंगा, पपुआ न्यू गिनी के कार्डिनल जॉन रिबर्ट, मलेशिया के कार्डिनल सेबेस्टियन फ्रांसिस, स्वीडन से कार्डिनल एंडर्स अर्बोलियास, लक्समबर्ग से कार्डिनल जीन क्लाउड होलरिक, तिमोर लिस्ते से कार्डिनल वर्जिलियो दे कोर्मा दा सिल्वा, सिंगापुर से कार्डिनल विलियम सेंग चीगो, पराग्वाई से कार्डिनल एडलबर्टो मार्टिनेज फ्लोरेस, दक्षिण सूडान से कार्डिनल स्टीफन अमेयो मार्टिन मुल्ला और सर्बिया से कार्डिनल लादिस्लाव नेमेथ। हालांकि कार्डिनल मंडल में यूरोप का अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है, पुराने महाद्वीप का प्रतिनिधित्व 53 कार्डिनल निर्वाचकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से कुछ गैर यूरोपीय देशों के महाधर्माध्यक्षों और धर्म प्रांतों के प्रमुख हैं या विदेश में या कुरिया में प्रेरितिक राजदूत के रूप में सेवा देते हैं। इटली में अभी भी कार्डिनलों की सबसे बड़ी संख्या 19 है। इसके बाद फ्रांस से 6, स्पेन से 5 कार्डिनल हैं, अमेरिका से 37 कार्डिनल, एशिया से 23, अफ्रीका से 18 और ओशिनिया से 4 कार्डिनल हैं। 37 कार्डिनल निर्वाचक अमेरिका से हैं, उत्तरी अमेरिका से 16, मध्य अमेरिका से 4 और दक्षिण अमेरिका से 17। इस प्रकार जबकि यूरोपीय कार्डिनल अभी भी कॉन्क्लेव में इकट्ठा होने वाले लोगों में अधिकांश का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी दुनिया अब स्पष्ट रूप से यूरोप से आगे निकल गई है, जिसमें अमेरिका ने अपने पलड़े को काफी हद तक बढ़ा दिया है। हालांकि अकेले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नए परमाध्यक्ष के चुनाव के परिणाम को निर्धारित नहीं करेगा, जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों से भी प्रभावित होता है, लेकिन परमाध्यक्ष की भूमिका के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए भौगोलिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निर्वाचकों की आयु के संबंध में मंडल में सबसे युवा कार्डिनल ऑस्ट्रेलियाई यूक्रेनी मूल के कार्डिनल मिकोला वाइचोक हैं, जिनकी आयु 45 वर्ष की है, जबकि सबसे बुजुर्ग स्पेन के कार्डिनल कार्लोस ओसोरो सिएरा हैं, जिनकी आयु 79 वर्ष है। 70 के दशक में 6 कार्डिनलों का जन्म हुआ, वे हैं रोम धर्म प्रांत के कार्डिनल बाल्दासारे रेना, कनाडियाई कार्डिनल फ्रैंक लियो, लिथुआनिया के कार्डिनल रोलांडास मकरिक, भारतीय कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुआकाड, पुर्तगाली कार्डिनल अमेरिको मैनुएल अल्वारेस अगुएर और इतालवी मूल के कार्डिनल जॉर्जियो मोरेंगो, मंगोलिया के उलान बटार के प्रेरितिक प्रीफेक्ट, जिनका पहली बार कॉन्क्लेव में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अन्य आयु समूहों में 40 के दशक में जन्मे 50 कार्डिनल, 50 के दशक में जन्मे 47 कार्डिनल और 60 के दशक में जन्मे 31 कार्डिनल शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला जन्म वर्ष समूह 1947 है, जिसमें 13 कार्डिनल 78 वर्ष और उससे भी अधिक आयु के हैं। कार्डिनल निर्वाचकों में से 33 18 विभिन्न धर्म समुदायों से संबंधित हैं। सलेशियन 5 सदस्यों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्डिनल चार्ल्स माउंगबो, कार्डिनल वर्जिलियो दो कौरमा दा सिल्वा, कार्डिनल एंजल फर्नांडिस आर्टिम, क्रिस्टोबल लोपेस रोमेरो और कार्डिनल डैनियल स्टारला बरहोएट। ऑर्डर ऑफ फ्रायर माइनर के 4 कार्डिनल हैं। कार्डिनल लुइस कब्रेरा हेरेरा, कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला, कार्डिनल जैमे स्पेंगलर और कार्डिनल लियोनार्डो स्टीनर। 4 जेसुइट कार्डिनल हैं। कार्डिनल स्टीफन चाउ सांगयांग, कार्डिनल माइकल चेर्नी, कार्डिनल जीन क्लाउड होलरिक और कार्डिनल एंजल रासी। 3 कार्डिनल कॉन्वेंटुअल फ्रांसिस्कन हैं। कार्डिनल फ्रांसवा जेवियर बाटिस्लो, कार्डिनल माउरो गम्बेत्ती और कार्डिनल डोमिनिक मैथ्यू। कॉन्क्लेव में 2 डोमिनिकन, कार्डिनल तिमोथी रेडक्लिफ और कार्डिनल जॉन पॉल वेस्को। 2 रेडेम्पटोरिस्ट, कार्डिनल माइकोला वाइचोक और कार्डिनल जोसेफ टोबिन। डिवाइन वर्ड मिशनरीज के 2 सदस्य, कार्डिनल तर्सिसियो किकुची और कार्डिनल लादिस्लाव नेमेत और कई अन्य संस्थाओं से 1-1 सदस्य भी शामिल होंगे। अगुस्टीनियन कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, कपुचिन कार्डिनल फ्रिडोलिन ओम्बोगो बेसुंगु, डिस्काल्ड कार्मेलाइट एंडर्स ओर्बेलियस से कार्डिनल सिस्टेरियन ओरानी जोआओ, क्लारिसियन कार्डिनल विंसेंट बोकालिक, प्यूस 10वें सेकुलर इंस्टीट्यूट के सदस्य कार्डिनल जेराल्ड लाइकोइस, कार्डिनल लेजारिस्ट बेरेनिस डेमोराव सौराफिल, कॉन्सोलाता मिशनरी कार्डिनल जोर्जियो मोरंगो, मिशनरी ऑफ द सेक्रेट हार्ट जॉन रिबैट के कार्डिनल स्कालाब्रिनियन फाबियो बागियो और कार्डिनल स्पिरिटन डियोडोने नाजा पालिंगा। मतदान देने वाले 135 कार्डिनलों में से 2 ने पुष्टि की है कि वे स्वास्थ्य कारणों से कॉन्क्लेव में भाग नहीं ले पाएंगे, जिससे कुल संख्या घटकर 133 हो गई है। इटालियन कार्डिनल जोवानी अंजेलो बेचू ने मंगलवार 29 अप्रैल को एक बयान जारी कर घोषणा की कि वह 7 मई से शुरू होने वाले कॉन्क्लेव में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की इच्छा का पालन करने का फैसला किया है, हालांकि उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। बयान में कहा गया है कि कलीसिया की भलाई को ध्यान में रखते हुए, जिसकी मैंने निष्ठा और प्रेम के साथ सेवा की है और करता रहूंगा, तथा सम्मेलन की शांति और सामंजस्य में योगदान देने के लिए मैंने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की इच्छा का पालन करने का निर्णय लिया है, जैसा कि मैंने हमेशा किया है, और मैं सम्मेलन में प्रवेश नहीं करूंगा और मुझे अपनी बेगुनाही पर पूरा विश्वास है। श्रोताओं, आप 7 मई को शुरू होने वाले आगामी कॉन्क्लेव के बारे में सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा प्रसारण समाप्त हुआ। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।